Шидэж. Шидэж. एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत क्षितिज कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जुलाई के महीने को कैसे भुला सकते हैं, क्योंकि जुलाई के महीने में हमारे साथ एक ऐसा लेखक जुड़ जाता है जिसे पूरी दुनिया आज भी अपने कंठ के स्वर में जोड़े रखती है। कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी पाठ्यक्रम हो, कोई भी चर्चा विचर्चा हो, उस लेखक को भुलाना असंभव है, जिसने कथा, उपन्यास, कहानी, निबंध सब तरह से एक रास्ता ही बदल दिया था। श्रोताओं, आज हम आपके साथ बात करेंगे प्रेमचंद जी की, और हमारे साथ जुड़ी हैं।
नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम श्रुति पाठक है। मैं भारतीय उच्चायोग में द्वितीय सचिव हिंदी एवं संस्कृति के पद पर हूँ। दिव्या और सज्जनों, जैसा कि अभी अलका जी ने बताया कि आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेमचंद जी पे, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, प्रसिद्ध कहानीकार, और उन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। आपको बता दें कि प्रेमचंद जी का पहले बचपन का नाम वैसे धनपत राय था, और शुरुआती दौर में उन्होंने नवाब राय के नाम से भी लिखा है, हालांकि बाद में वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे।
श्रोताओं, प्रेमचंद ने हिंदी में जो पांव रखा, उस समय हिंदी का पाठक कुछ ऐसी कहानियां पढ़ रहा था कि किसी कल्पना लोक में विचर रहा था, जैसे उड़न छू दरी, मान लीजिए तोते में किसी के प्राण हैं, कोई राक्षस है, अलादीन का चिराग है, जादुई चिराग है, कुछ ऐसी कहानियां पढ़कर हम बड़े खुश थे। प्रेमचंद ने इस कल्पना लोक से हमको मनुष्य के मन में उतारा। उन्होंने जो कहानियां लिखी, वे मनुष्य के मन, उसकी भावनाओं, उसके हृदय में उठने वाले मनोविकार, विचार, इन सब पर जो कहानियां प्रस्तुत की, मानो लेखन की दिशा ही उन्होंने बदल दी।
बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ पहले हमें पुराणों में कथाएं तो मिलती हैं, उसके बाद तिलिस्म लिखे जाते थे, लेकिन देखिए, जब प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया, उन्होंने सबसे पहले कृषक, मजदूर, इन सबको वो अपनी कहानी के मुख्य पात्र के रूप में लेकर सामने आए। चाहे वो उनकी कफन कहानी हो, पूस की रात कहानी हो, और चाहे समाज की विभिन्न समस्याएँ हों, एक आम इंसान जिन समस्याओं से गुजरता है, तिलिस्म की दुनिया से निकल कर वो एक वास्तविकता के धरातल पर लेकर आए पाठकों को, और इस तरह की कहानियां लिखी जिसमें हर व्यक्ति अपने आप को, अपना प्रतिबिंब भी देख पाता था, अथवा ग्रामीण जीवन में चल रही विभिन्न समस्याओं का साक्षात्कार कर पाता था। चाहे निर्मला का बेमेल विवाह हो, गबन में झूठी शान की खातिर कोई गबन किया गया हो, या फिर हम जैसा कि जानते ही हैं, गोदान में जो एक कृषक की क्या दुर्दशा होती है, उसका सजीव चित्रण किया हो। हर जगह हम देखते हैं कि बेहद बेहतरीन तरीके से, बेहद खूबसूरती से वो इन सभी चीजों का अपने उसमें चित्रण करते हैं, और एक आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की स्थापना उन्होंने की।
श्रुति जी, मैं जोड़ना चाहूंगी कि प्रेमचंद एक सच्चे लेखक थे, और लेखक थे सामान्य जन के। वे लिखते हैं, मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन मैं कुछ लिखूं नहीं तो मुझे रोटी खाने का अधिकार नहीं। आप सोचिए, अपने कर्तव्य के प्रति या अपने काम के प्रति इतनी निष्ठा कि मुझे लिखना है। और अमृत राय ने एक संस्मरण में लिखा है कि एक बार वे रेल में जा रहे थे, वहाँ पर भी आधी रात को देखा तो कुछ लिख रहे थे, तब उनसे कहा गया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सो जाइए। बोले, नहीं, रात को सोने से पहले मुझे कुछ लिखना ज़रूर है। तो इतनी ईमानदारी, इतनी कर्मठता उस व्यक्ति में थी, इसीलिए अपने छोटे से जीवन काल में भी वे लगभग 12 उपन्यास पूरे कर पाए, और 13वां उपन्यास मंगलसूत्र उनका अधूरा रह गया, और मानसरोवर के 6 खंडों में उनकी 300 से अधिक कहानियां हमको मिलती हैं। और श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो पहली पत्रिका उन्होंने कहानी लिखी थी, सोजे वतन, अंग्रेज इतने घबरा गए थे कि उन्होंने सारी प्रतियां जब्त कर ली थी। और जो सोजे वतन, इसका हिंदी अर्थ है राष्ट्र का विलाप। इस कहानी में जो नायिका है, वह मांगती है कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़, तो जो नायक है, जब तक वह यह चीज़ नहीं लाता कि मेरे शरीर के खून का आखिरी कतरा भी देश को समर्पित हो, यही दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। तो ऐसी कहानियों को पढ़ने या सुनने के बाद वो जो देश प्रेम का भाव जागृत होना था, उससे अंग्रेज घबरा गए और सारी प्रतियां उनके सामने ही जला दी गई थी।
बिल्कुल सही कहा आपने, सोजे वतन का तो ऐसा हाल था कि कई बार प्रेमचंद को कहा गया कि उन्हें खुद भी उसकी प्रतियां जलानी पड़ी थी, और शायद उनका जो देश के प्रति प्रेम था और आम इंसान के प्रति उनको अपने आप को जिम्मेदार समझते थे, शायद यही कारण है कि वो हमेशा उनके लिए लिखते रहे। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को तो हम जानते ही हैं, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध आलोचक और साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने एक बात कही थी प्रेमचंद की के ऊपर, उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा निराशा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही कहा था।
बहुत सही बात आप श्रुति जी कह रही हैं। और देखिए, ये लगन बचपन से होती है, वो जो अंदर दिया जल रहा था ना, इतना लिखने का, पढ़ने का, जब उनके बारे में हम पढ़ते हैं तो अभी वे छोटे ही थे, तो गरीबी थी बहुत, नौकरी करनी पड़ी, लेकिन पढ़ने का इतना शौक था कि एक पुस्तक विक्रेता के यहाँ उन्होंने काम शुरू किया और रात रात में बैठकर किताबें पढ़ते रहते थे। और यहाँ उन्होंने इतने किताबें पढ़ डाली कि पुस्तक विक्रेता भी हैरान हो गया। और बाद में वे हिंदी के अध्यापक भी बने, शुरू में तो वे उर्दू में लिखा करते थे, लेकिन बाद में फिल्म लाइन में भी उन्होंने कुछ प्रयोग किए। 1934 में एक अजंता सिनेटोन नाम की व्यक्ति ने मजदूर फिल्म बनानी शुरू की और इन्होंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन पूंजीपतियों ने इसे रिलीज नहीं होने दिया। बाद में गोदान पर भी फिल्म बनी, लेकिन प्रेमचंद बहुत दुखी हुए क्योंकि फिल्में दुनिया के लटके झटके उनकी जो कहानियों के साथ थे वो खिलवाड़ करते थे, क्योंकि वे गरीब आदमी की आवाज़ बनना चाहते थे। तो बाद में वे सब छोड़कर वहाँ से वापस फिर से लेखन के क्षेत्र में आ गए।
बिल्कुल सही कहा, और वो बहुत ही सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति थे अलका जी, क्योंकि उनका जीवन खुद इतना संघर्षमय रहा था और वो अध्यापक की नौकरी पे थे, और जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी ने जब आह्वान किया था तो उन्होंने अपनी वो नौकरी भी छोड़ दी थी, क्योंकि वो देश के लिए इतने ज्यादा दिल से जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो सिद्धांतों पे चलने वाले व्यक्ति थे, कहीं उन्हें सही नहीं लगा अगर कोई चीज तो वो उसको छोड़ कर भी आगे बढ़े हैं, और पर अपने सिद्धांतों से उन्होंने समझौता नहीं किया।
समझौता ही नहीं, जीवन में देखिए सिद्धांतों के प्रयोग भी किए। जो पहली पत्नी थी वह उनको छोड़कर चली गई थी, बाद में जब शिवरानी देवी से उन्होंने विवाह किया तो वे एक बाल विधवा थी, और उस जमाने में बाल विधवा को लोग अपशकुन मानते थे, लेकिन प्रेमचंद जी ने शिवरानी देवी से विवाह किया और यह विवाह उनका बहुत ही उत्तम रहा, यहाँ तक कि वे शिवरानी देवी को भी प्रेरणा देते थे कि वह भी कुछ लिखे, और कुछ चीज़ें उन्होंने भी लिखी थी।
बिल्कुल, और ख़ास तौर पे एक चीज़, जैसे कहते हैं ना कि खाली कथनी ही नहीं, उनकी करनी में वो चीज़ नज़र आई है हमेशा। और एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद था उनका, अलका जी अगर आप देखें तो बाद के जीवन में वो सिर्फ यथार्थवाद की ओर चला जाता है, चाहे वो हमारा गोदान का गोदान उपन्यास हो या फिर पूस की रात जैसी, कफन जैसी कहानियाँ हों, जहाँ पर वो बिल्कुल आदर्श की स्थापना से अब उनका भंग जैसा हो गया है, और अब वो बिल्कुल यथार्थ को, जैसे कहते हैं ना, जो है वही सीधे ही उसका चित्रण करना शुरू कर दिया। जैसे गोदान में होरी की स्थिति जो है, और या फिर पूस की रात में जब वो हल्कू देखता है कि नील गायें पूरा खेत चर रही हैं, पर वो ठंडी हवा का झोंका जो उसको लगता है, तो वो उसकी जो एक स्थिति आ गई है कि वो कर्म से विमुख हो जा रहा है, नहीं तब ये यहाँ पर प्रेमचंद कहते हैं कि वो कर्म से विमुख नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे वो कुछ भी काम कर ले, उसका जो फायदा मुनाफा है वो तो सेठ साहूकार ले जाएंगे। तो ऐसे में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि नील गाय खेत चर रही हैं,
तो यहाँ तो अच्छा ही है, वो
अच्छा ही है। बल्कि यहाँ एक तरीके से देखेंगी तो ये बड़ा मार्मिक वर्णन है कि कैसे एक व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ तो नहीं हुआ है,
तटस्थ हो जाता है
अपने। तो ये बहुत अच्छी उसका चित्रण था उसमें।
और श्रुति जी, कफन में भी यही स्थिति है। प्रेमचंद वहां लिखते हैं कि वे पीते हैं, चोरी करते हैं, लेकिन यदि देखा जाए तो समाज भी इसमें दोषी है, व्यवस्था भी दोषी है जो प्रत्येक व्यक्ति को कार्य नहीं दे पाती है। तो जब काम नहीं मिलता और फिर इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ती जाती हैं, नशे की प्रवृत्ति है, चोरी करते हैं वे लोग, तो प्रेमचंद वहां भी दिखाते हैं कि वे कफन तक को बेच डालते और वे समाज का मनोविज्ञान इतनी अच्छी तरह समझते हैं कि पिता पुत्र से कहता है चिंता मत कर, यही लोग उसको कफन फिर से दिलाएंगे।
बिल्कुल, और प्रसव वेदना से जब वो अंदर करा रही होती है, बिल्कुल हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे बाहर में दोनों जन अपने आलू की चिंता, उनको भुने हुए आलू, हाँ भूख, कैसे पेट की ज्वाला कैसे व्यक्ति पर हावी हो जाती है और वो अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाता है, इसको बड़ी बारीकी से दिखाया है और ये समझने वाली बात है। उस समय के समाज को देखिए कैसे उन्होंने ला के सामने रखा, औपनिवेशिक काल था और एक जनता एक खास दौर से गुजर रही थी, इन सभी चीजों पे उन्होंने बहुत सुंदर प्रकाश डाला है।
प्रेमचंद बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे, ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने निबंध भी लिखे, नाटक संग्राम और करबला जैसे लिखे, अनुवाद भी उन्होंने किया, बाल साहित्य भी लिखा और उपन्यास और कहानियों में तो कोई उनका सानी था ही नहीं। इसके साथ साथ हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं के वे वर्षों संपादक भी रहे। तो श्रोताओं, वो जो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था, इनकी कहानियां पुस्तकें आज न केवल भारत, न केवल मॉरिशस, बल्कि यूरोपियन देशों में या जिन देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है वहां पर भी यदि प्रेमचंद को वे ना पढ़ाएं तो हिंदी अधूरी रह जाती है।
बिल्कुल सही कहा आपने, और उर्दू ही नहीं हिंदी में भी उन्होंने लिखा, और अगर आप उनकी भाषा शैली को देखेंगे तो कितनी सहज सरल भाषा में
हिंदुस्तानी शैली है,
बिल्कुल
उनकी।
और जिसको एक आम इंसान बड़े आसानी से समझ भी पाता है और बड़े उसके साथ एक जुड़ाव महसूस करने लगता है। उनकी कहानियां देखा जाए तो केवल मनोरंजन नहीं करती, समाज निर्माण का भी काम करती है, एक संदेश लेकर आती हैं और समाज की कुरीतियों को इतनी बारीकी से आपके सामने रख देते हैं कि कोई उपदेशात्मक तरीके से नहीं बल्कि आपको खुद सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे अभी हमने दो कहानियों पर बात की, चाहे वो पूस की रात हो, कफन हो, आपके सामने स्थिति रख दी, अब पाठक खुद सोचता है कि अच्छा इन स्थितियों के कारण वो व्यक्ति कर्तव्यच्युत होता है। तो ये भी एक तरीका है समाज को समझाने का, राह दिखाने का, मार्ग प्रशस्त करने का, जिसके तो हमारे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद माहिर खिलाड़ी थे ही, शतरंज के खिलाड़ी याद आई तो
उस पर तो फिल्म भी बन चुकी है।
बिल्कुल बिल्कुल,
और बहुत ही सुंदर है कि शतरंज के लिए वो एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हैं,
हो जाते
लेकिन
हैं।
अपना जो अधिकार है, अपना जो सत्ता है, उसकी उनको चिंता नहीं है। कितना राजनीति में जो कुछ हो रहा था उसका प्रतिबिंब उसमें हमको दिखाई देता है।
बिल्कुल,
इसी तरह से ईदगाह कहानी देखिए, एक बच्चे का मनोविज्ञान, मतलब इतना सुंदर वर्णन प्रेमचंद जैसे बाल मन को अंदर से झांक कर
देख पाते हैं, चिमटा खरीदने
कर आता है वो
कि वो हाथ।
इसी तरह से रंगभूमि में देखिए, वो जो बड़ा कारखाना बनना है उसके बाद एक गांव कैसे उजड़ता है।
बिल्कुल,
किस तरह से वहां पे शराब के ठेके खुलेंगे, गांव की खेती नष्ट होगी, चरागाह नष्ट हो जाएंगे, लेकिन पूंजीपति पैसा बटोर के चले जाएंगे। आज जो पर्यावरण की हम बातें कर रहे हैं उसको खोल कर पढ़ें तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद कितने प्रासंगिक थे। बातें बहुत हो सकती हैं लेकिन इतना साहित्य उनका, समय बहुत कम है, तो श्रुति जी और मुझे अनुमति दें। इसी के साथ यूसुफ जी का बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें तकनीकी सहायता दी। आप सभी को शुभ दिन, नमस्कार।
नमस्कार श्रोताओं,
क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।